सात्विकम् वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणय कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण तो इस वर्ष के कृष्ण कथा में प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अद्भुत ढंग से अरिष्टासुर का वध कर दिया और सारे ब्रजवासी गण बहुत प्रसन्न हुए, देवता गण भी प्रसन्न हुए, फूलों की वर्षा करना शुरू कर दिया उन्होंने। अरिष्टासुर के वध के संदर्भ में एक बहुत सुंदर लीला है जो कृष्ण भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों में इस कथा का वर्णन है। ऐसे बताया जाता है कि जब अरिष्टासुर का वध श्री कृष्ण ने किया और वो गोपियों के पास गए थे एक बार, तो श्रीमती राधा रानी कहने लगी श्री कृष्ण से कि हमारे पास नहीं आना, हमें छूना नहीं, क्योंकि तुमने एक बैल का वध किया है। बैल तो गोवंश है और बैल की हत्या अर्थात गोहत्या तो बहुत जघन्य कार्य है, बहुत बड़ा पाप है, इसलिए हमें छूना नहीं, नहीं तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे। तो तुम्हें सारे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सब में भ्रमण करना होगा, जितने भी पवित्र नदियां कुंड आदि हैं उनमें स्नान करना होगा, फिर यहां लौट के आना। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो असुर था, उसने तो केवल बैल का रूप धारण किया था, असली बैल थोड़ी था वो, और ऐसे असुर का वध करना तो मेरा कर्तव्य बनता है। सारे ब्रजवासियों के लिए तो नाक में दम बन गया था, आक्रमण कर रहा था, उत्पात कर रहा था यहां पे। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा जो भी हो लेकिन ये था एक बैल, इसलिए ये गो हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर है और प्रायश्चित अवश्य करना होगा। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी सारे ब्रह्मांड में पर्यटन करने वाला हूं, भ्रमण करने वाला हूं तीर्थ स्थानों में स्नान करने के लिए, सारे तीर्थ स्थानों को यहीं बुला लेता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन ही मन में ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ स्थानों को बुलवाया और वो सब भगवान के सामने उपस्थित हुए, अंजलि मुद्रा में खड़े रहे हाथ जोड़कर, ऐसे श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों से कहा देखो ये है पाताल लोक से आने वाली भोगवती नदी और ये है समस्त तीर्थ स्थान सारे ब्रह्मांड के, यहां खड़े हैं देखो मेरी सेवा के लिए तत्पर हैं। तो गोपियों ने उत्तर दिया कि हम नहीं विश्वास करते कि ये सब तीर्थ स्थान है, कैसे पता, केवल तुम्हारे शब्दों में विश्वास करेंगे? नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ये कौन है हमें नहीं पता। तो फिर एक से एक जितने भी तीर्थ स्थान थे वो सामने आए और हाथ जोड़कर गोपियों के सामने कहने लगे मैं ताम्रपर्ण नदी हूं, कोई कहने लगे मैं क्षीर सागर हूं, कोई देवी आकर कहने लगी मैं गोदावरी हूं, कोई कहने लगी मैं नर्मदा हूं, मैं गंगा हूं, मैं यमुना हूं, मैं सरस्वती नदी हूं, मैं प्रयागराज तीर्थ स्थान हूं। ऐसे जितने भी तीर्थ स्थान आए थे एक के बाद एक गोपियों के सामने आए, हाथ जोड़कर अपना अपना परिचय देने लगे, तब गोपियों को विश्वास हुआ। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है आप जरा खड़े रहना यहां पर। तो अपने एड़ी से उन्होंने एक खड्डा बना दिया जिस स्थान में कि उन्होंने अरिष्टासुर का वध किया था, उस स्थान में अपने एड़ी से उन्होंने और गड्ढा बना दिया बड़े तेजी से और इन सारे तीर्थ स्थानों को, पवित्र नदियों को, कुंडों को कहा कि चलिए आपका जल इसमें भर दीजिए। तो फिर बहुत ही उत्साह से वो सब आए, अपना जल भर दिया और उस दिन से उस कुंड का नाम हुआ कृष्ण कुंड या श्याम कुंड। आप में से जो वृंदावन गए हैं अवश्य श्याम कुंड और राधा कुंड तो गए होंगे। तो इस तरह से श्याम कुंड बना। और फिर श्रीमती राधा रानी से कृष्ण कहने लगे अब तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया था श्री कृष्ण ने, सारे ब्रह्मांड के तीर्थ स्थानों को बुलाना कोई छोटा काम थोड़ी होता है, एक तीर्थ स्थान में जाना हो तो कितना कुछ करना पड़ता है, हमें रेलगाड़ी एरोप्लेन की टिकट ले लो, इतनी तैयारियां करो, दूर जाओ, प्रसाद की व्यवस्था करो, रहने की व्यवस्था करो, वो तो एक तीर्थ स्थान में जाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने अनंत कोटि तीर्थ स्थानों को बुलवाया और उस जल में स्नान किया और गोपियों से कहा अब मैं शुद्ध हो गया हूं। तो थोड़ा अहंकार का भाव श्री कृष्ण ने प्रकट किया, मैंने तो प्रायश्चित कर दिया लेकिन तुम गोपियां जो है तुमने कौन सा बड़ा दोष किया पता है, तुमने अरिष्टासुर नाम के एक असुर का पक्ष लिया है, इसलिए तुम दोषी हो। और दूसरी बात यह है कि आज तक तुम गोपियों ने कोई धार्मिक कार्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए नहीं किया है, बस केवल गाय का दूध निकालते रहे, बस कुछ धार्मिक कार्य तो करने चाहिए, कुछ नहीं किया है आज तक। तो श्रीमती राधारानी का, अच्छा ऐसी बात है, हम कम थोड़ी हैं, आप कुछ कुंड बना सकते हो तो हम क्या नहीं बना सकते, अवश्य बनाएंगे। तो श्रीमती राधारानी ने अपने गोपियों को बुलाया कि चलो, अच्छा देखो यहाँ पे अरिष्टासुर ने अपने खुरों से एक छोटा सा गड्ढा बना दिया है, उसको इसकी खुदाई हम करें। तो सारे गोपियां काम में लग गईं, वहां की जो मिट्टी थी सब निकालने लग गए अपने हाथों से, और अनेकों ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी और उनसे खुदाई करने लगे, और एक बहुत बड़ा और अच्छा कुंड बन गया जिसका नाम हुआ कंकन कुंड। कंकन अर्थात जो चूड़ियां होती कंकन, तो कंकन कुंड बन गया। तो श्री कृष्ण खड़े खड़े देख रहे थे, तो श्री कृष्ण ने फिर श्रीमती राधा रानी से कहा, बहुत बढ़िया काम किया आप सबने, अब ठीक है मेरे कृष्ण कुंड का जल तैयार है, और यदि आप चाहो तो ठीक है आपके कुंड में भी ये जल आ सकता है। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं हरगिज नहीं ऐसे होगा, ये पाप तो दूषित, ये तो जल तो दूषित हो गया है, क्योंकि वहां स्नान किया है आपने, आपके सारे पाप गो हत्या के पाप उस जल में आ गए हैं, अब ये जल यहाँ आएगा तो ये प्रदूषित जल मानेंगे हम, नहीं स्वीकार करेंगे इस जल को। उधर जितने भी तीर्थ स्थान थे उनके जो प्रमुख थे वो हाथ जोड़ के खड़े थे, तो श्री कृष्ण ने अपनी आंखों से इशारा किया उनको, और वो आ गए श्रीमती राधा रानी के सामने हाथ जोड़ के, और सुंदर सुंदर प्रार्थना करने लगे, श्रीमती राधा रानी की स्तुति करने लगे, और श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हुई, और श्रीमती राधा रानी ने फिर कहा कि क्या इच्छा है आपकी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा यदि आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि बताइए आपकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा, हमें आपकी सेवा का आप एक अवसर दीजिए, हमारे जल यहाँ उपलब्ध हैं आपकी सेवा के लिए, बस आदेश दीजिए और हम आपकी सेवा के लिए आपके कुंड में प्रवेश कर जाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हुई, कहा अवश्य। और फिर जो कृष्ण कुंड या श्याम कुंड का जल था वो यहाँ इस कुंड में आ गया, और इस कुंड का नाम फिर हुआ राधा कुंड। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने श्रीमती राधा रानी के सामने घोषणा की कि ये जो कुंड है जिसका नाम है राधा कुंड, ये तुम्हारा कुंड है, और जिस प्रकार से तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, ये कुंड भी मेरे लिए उतना ही प्रिय रहेगा, और जो भी व्यक्ति इस कुंड में स्नान करेगा वो भी मेरे लिए इतना ही प्रिय रहेगा। तो श्रीमती राधा रानी ने उत्तर दिया कि जो इस कृष्ण कुंड में ये श्याम कुंड में स्नान करेगा वो भी मेरे लिए इतना ही प्रिय हो जाएगा जितना कि आप हैं, और यदि तुम आज से करोड़ों अरिष्टासुरों का वध भी इस स्थान में करो तो फिर भी मैं इस कुंड में स्नान करूंगी। तो इस तरह से राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट हुए, और फिर वहां पे राधा कुंड के तट पे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ में रासलीला रचाई। तो राधा कुंड और श्याम कुंड सारे ब्रह्मांड के, बल्कि सारे आध्यात्मिक जगत के भी सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं। उपदेश अमृत में श्रील रूप गोस्वामी ने एक वर्णन किया है, तीर्थ स्थानों की तुलना की है। आप तो जानते हैं कि ये भौतिक जगत ये तो जड़ जगत है, भौतिक जगत से परे है भगवान का धाम, जिसको वैकुंठ जगत कहते हैं। यह है सकुंठ। सकुंठ मतलब जिसमें जो जगत कुंठ या चिंता कष्ट आदि से युक्त है, तो यह है सकुंठ। और वो है वैकुंठ, जहां कोई कष्ट नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो अवश्य वैकुंठ जगत इस भौतिक सृष्टि से श्रेष्ठ है, परंतु वैकुंठ जगत से भी श्रेष्ठ कोई स्थान है। तो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। वो कहते हैं कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा। याद रखिएगा कि जो जहां मथुरा वृंदावन द्वारका आदि प्रकट हुए हैं, वो सब आध्यात्मिक जगत में भी हैं मूल रूप से। जब भगवान यहां प्रकट होते हैं इस भौतिक सृष्टि में, इस धरातल पर, तो भगवान इन धामों को भी साथ में ले आते हैं। भगवान कभी अकेले नहीं आते, और केवल अपने पार्षदों को ही नहीं ले आते, अपने धाम को ही ले आते हैं। तो यहां जो वृंदावन मथुरा द्वारका आदि हैं, वो सब आध्यात्मिक जगत के वृंदावन मथुरा आदि से बिल्कुल अभिन्न हैं, लेश मात्र भी कोई अंतर नहीं है। बल्कि ऐसे बताया जाता है कि ये एक अपराध है जब हम ऐसा मानते हैं कि दोनों में अंतर है। यदि हम सोचेंगे कि अरे ये तो भाई भौतिक जगत का वृंदावन है, हम जब वृंदावन में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, इतना शोर है, यहाँ लोग चिल्ला रहे होते हैं, प्रदूषण है, धूल है, गर्मी ठंडी है, बंदर चश्मा चोरी कर लेते हैं, और गटर सब खुले खुले पड़े हैं, कुत्ते परेशान करते हैं, रिक्शा वाले बहुत पैसा ज्यादा छीन लेते हैं, डाकू लोग हैं। ये सब माया वृंदावन है, ये तो वृंदावन का बाह्य स्वरूप है। जो लोग अश्रद्धालु हैं उनके लिए है ये। जिस प्रकार से श्री कृष्ण को जानना ये आसान नहीं है, केवल भक्ति द्वारा श्री कृष्ण जाने जा सकते हैं। भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जान लो कि केवल भक्ति से ही तुम मुझे जान पाओगे, मुझ भगवान को जो कि तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वैसे और कोई भी रास्ता नहीं है। और जब ऐसे भक्ति के द्वारा तुम मुझे जानोगे ज्ञातुम, तो तुम मुझे देख पाओगे द्रष्टुम, और उसके बाद प्रवेशतुम च, फिर मेरे धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य व्यक्ति हो जाओगे। तो जो सच्चे भक्त है वृंदावन के, कृष्ण के, वही मात्र वृंदावन को सही रूप से पहचान सकते हैं। प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि वृंदावन आप केवल रेल की टिकट खरीद कर नहीं जा सकते। प्रभुपाद ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप एरोप्लेन से, हवाई जहाज से जाएंगे तो आप पहुंच पाएंगे, नहीं। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि केवल भौतिक दृष्टि से प्रवेश करना वृंदावन भौगोलिक स्थान में, वृंदावन की भौगोलिक सीमा में प्रवेश करना, केवल ये वृंदावन का प्रवेश नहीं है। शारीरिक रूप से प्रवेश करना ठीक है, इसमें भी बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि अंततः ये तो धाम है। फिर भी वास्तविक व्रज भूमि का प्रवेश अपने अंतःकरण से होता है, अपने भक्ति भाव से होता है। यदि हम बेलगाम में बैठे हैं और श्री कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं का सतत स्मरण करते हैं, गुणगान करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं, तो हम वृंदावन में स्थित हैं। और वृंदावन में शारीरिक रूप से स्थित रहने के बाद भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बेलगाम में बैठे बैठे आज हम ये टीवी का कार्यक्रम देख रहे होते, अभी कहाँ आ गए वृंदावन, तो फिर हम वृंदावन में रह के भी वृंदावन में नहीं हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम को, ढक लेते हैं उन लोगों की दृष्टि से कि जो अश्रद्धालु हैं। भगवान की योग माया शक्ति है जो कि ढकती है वृंदावन को, ताकि केवल श्रद्धालु लोग ही सही वृंदावन को पहचान सकें, जान सकें। तो खैर, बाह्य दृष्टि से यदि हम वृंदावन को देखें तो संभावना रहती है कि हम गलत समझें वृंदावन को। इसलिए हमें जान लेना चाहिए कि यहाँ के वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। इसे भौम वृंदावन कहते हैं क्योंकि ये भूमि के ऊपर प्रकट हुई है, और वो है पर व्योम वृंदावन, आध्यात्मिक आकाश में नित्य रूप से स्थित रहने वाली। तो दोनों पर व्योम वृंदावन धामों में और यहां के भौम वृंदावन धाम में कोई अंतर नहीं है। फिर भी वैकुंठ जगत में जो अन्य वैकुंठ लोक हैं उनसे भी श्रेष्ठ है मथुरा, जो कि उस आध्यात्मिक जगत में स्थित है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, वैकुंठाज जनितो वरा मधुपुरी। तो मधुपुरी या मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों है? जनिता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म वहां हुआ था। और आगे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम, परंतु मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदारण्यम अर्थात वृंदावन। क्यों? क्योंकि वृंदावन में और विशेष करके वंशी वट पे भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी, इसलिए वृंदावन मथुरा से भी श्रेष्ठ कहलाता है। और आगे रूप गोस्वामी कहते हैं, उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। वो कहते हैं कि गोवर्धन ये वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली से इस गोवर्धन का स्पर्श करके इसे उठाया था और लगातार 7 दिन और 7 रात धारण करके लिया। इसलिए गोवर्धन वृंदावन से भी शुद्ध या श्रेष्ठ माना जाता है। शुद्ध तो वृंदावन है, श्रेष्ठ तो गोवर्धन में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की। वहां कोई मोबाइल फोन का कोई तकलीफ नहीं हुआ करता था, उनके लीलाओं में कभी भी मोबाइल फोन बीच में बजते नहीं थे। बड़ी बड़े अच्छे वातावरण में गोवर्धन में भगवान कृष्ण की लीलाएं चलती थीं। इसलिए गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ माना जाता है। और क्या गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ जगह है? गोवर्धन वैसे बताया जाता है कि एक मोर के रूप में है, एक मोर जिसने अपनी गर्दन घुमा ली है और घुमाकर अपने चोंच को अपने पेट में लगाए हुआ है। मोर अक्सर ऐसे किया करते हैं, आपने ऐसे पंछियों को देखा होगा जैसे हंस होते हैं या मोर होते हैं, ऐसे घुमाकर चोंच अपने पेट में डालते हैं, अपने आप को खुजा लेते हैं। तो गोवर्धन का स्वरूप एक ऐसा है, मोर की तरह है। तो खैर, गोवर्धन के बारे में अधिक चर्चा अब नहीं करेंगे क्योंकि ये मुख्य विषय नहीं है, परंतु बात यह है कि इस मोर रूपी गोवर्धन के 2 आंखें हैं, वो है राधा कुंड और श्याम कुंड। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी गोवर्धन के ही भाग माने जाते हैं, फिर भी अपने आप में वो गोवर्धन के अन्य भागों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। राधा कुंडम यहापि गोकुलपते है प्रेमामृता प्लावनात्। रूप गोस्वामी कहते हैं गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड, क्योंकि इस राधा कुंड में भगवान श्री कृष्ण जो कि गोकुल पति हैं उनके प्रेम का अमृत का बाढ़ है। तो जो भी व्यक्ति इस राधा कुंड की कृपा प्राप्त करता है, इस राधा कुंड के जल को अपने सिर पे अपने सर पे शिरा, संस्कृत में शिर कहते हैं, में धारण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था अष्टमी तिथि में, कार्तिक महीने में बहुलाष्टमी ये महत्वपूर्ण दिन है, तो हजारों की संख्या में लोग बीच रात को वहां राधा कुंड में स्नान करने जाते हैं। इतनी भीड़ होती है कि वहां आगे चलने के लिए जगह नहीं होती, तो भगवान श्री कृष्ण भी अष्टमी की तिथि में प्रकट हुए थे, श्रीमती राधा रानी भी अष्टमी तिथि में प्रकट हुई थी, और राधा रानी का जो कुंड है राधा कुंड, इसका प्राकट्य भी अष्टमी तिथि में ही हुआ, तो इसे बहुलाष्टमी कहते हैं। तो लोग वहां जाके स्नान करते हैं, परंतु आजकल अनेक लोग ऐसे हैं जो भौतिक कारणों से राधा कुंड में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, किसी का कोई संतान न हो या कोई ऐसे कोई समस्या हो तो कहते हैं कि जाके सारी इच्छाएं पूर्ण, अरे हमें कहना नहीं चाहिए था, खैर खैर निकल गया मुंह से अभी। तो लोग जाते हैं ऐसे सब भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, परंतु जो अच्छे भक्त होते हैं, जो वास्तविक भक्त होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से या श्रीमती राधा रानी से कोई भौतिक चीजें नहीं मांगते हैं। असली भक्ति तो ये है कि जब हम राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए केवल हम कार्य करें, न कि हम भगवान के पास जाएं और उनसे तरह तरह की चीजें मांगे। तो राधा कुंड में जो जल है वो भी चिन्मय जल माना जाता है, साधारण जल नहीं है, यद्यपि दिखने के लिए तो साधारण जल जैसे ही प्रतीत होता है। तो ये है राधा कुंड कम की महिमा। वैसे विषय तो बहुत लंबा है, राधा कुंड और श्याम कुंड 5000 वर्ष पहले प्रकट हुए यहां, परंतु आध्यात्मिक जगत में राधा कुंड श्याम कुंड तो है ही, नित्य रूप से विद्यमान है। तो वो यहां भगवान श्री कृष्ण की लीला को और भी मधुर बनाने के लिए प्रकट हुए हैं। तो ये है राधा कुंड और श्याम कुंड का महत्व, हमें जान लेना चाहिए। तो इसका संबंध अरिष्टासुर के वध से बहुत गहरा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजमंडल गए थे 500 वर्ष पूर्व, तो वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीला स्थलियां हैं वो सब अप्रकट हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, किसी को पता नहीं था, वहां के लोगों को पता नहीं था कि श्री कृष्ण की लीला स्थान सब कहाँ है। चैतन्य महाप्रभु ने कई स्थानों को ढूंढ निकाला और बाद में उन्होंने अपने निकट के प्रिय शिष्य जो षड गोस्वामी हैं उनको आदेश दिया कि आप वहां वृंदावन में जाके रह जाओ और वहां जाके आप ग्रंथों की रचना करना जिसमें कि समस्त शास्त्रों का सार या निचोड़ होगा, जिससे आप साबित कर पाओगे कि समस्त वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है श्री कृष्ण की भक्ति करना, साथ साथ में वैष्णव आचार व्यवहार आदि क्या होता है इसकी भी व्याख्या करना शास्त्रों के आधार पर, अर्चक विग्रह और मंदिरों की स्थापना करना, और चौथी बात उन्होंने कही कि जो भी श्री कृष्ण की लीला स्थलियां हैं उनको पुनः प्रकट कराना और स्थापित करना। परंतु इस कार्य की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने की थी। 5000 वर्ष पूर्व तो श्री कृष्ण अप्रकट हो गए, स्वधाम लौट गए, परंतु उनके जो प्रपौत्र थे, प्रपौत्र अर्थात उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र, उनके पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। तो वज्रनाभ ने अनेक विग्रहों की स्थापना ब्रजभूमि में की, परंतु अनेक वर्षों के बाद ये सब अप्रकट हो गए, न जाने कहां कहां चले गए। लेकिन षड गोस्वामियों के आने के बाद लगभग उस समय ये सारे विग्रह फिर से प्रकट होने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां गए थे तो जब वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तो वो राधा कुंड और श्याम कुंड ढूंढ रहे थे परंतु उनको मिला नहीं। उन्होंने अनेक वहां के किसानों से पूछा कि भाई राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, तो किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन किसी ने कहा हाँ कारो कुंड गौरव कुंड यहाँ है, ब्रज भाषा में कहते हैं कारो, कारो मतलब काले, मतलब कृष्ण, कृष्ण को कहते वो कारो है। अच्छा तो श्याम कुंड और राधा कुंड, तो फिर चैतन्य महाप्रभु वैसे तो अंतर्यामी है सब जानते हैं, उन्होंने जाके देखा कि ये कुंड तो क्या यहाँ तो बस खेती चलती है, तो थोड़ा सा जल पड़ा है, परंतु पहचान गए श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड और श्याम कुंड को। भाव विभोर होकर वहां दौड़े और उस जल में उन्होंने बड़े भक्ति भाव से स्नान किया और फिर उन्होंने षड गोस्वामियों को भी आदेश दिया आगे चल के कि देखो ये है राधा कुंड श्याम कुंड। षड गोस्वामियों में से एक थे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो राधा कुंड के तट पे निवास किया करते थे और वहां अपनी अपना भजन करते थे। एक बार बैठे बैठे राधा कुंड का दर्शन करते अपना जप आदि कर रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया कि ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है, इसका महात्म्य तो अपार है, परंतु यहाँ कोई घाट नहीं है स्नान करने के लिए। इस कुंड को ठीक से बनाना चाहिए, अच्छी दीवारें होनी चाहिए, तो कुछ मरम्मत होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जैसे ही ये विचार उनके मन में आया फिर वो अपने आप को धिक्कारने लगे, अरे रे ये सब क्या है, मेरा भजन छोड़कर मैं ये सब निर्माण कार्य के बारे में सोच रहा हूँ, व्यवस्थापन मैनेजमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं 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 ये सब। फिर इस बात को अपने मन से हटाने का प्रयास किया और बैठ के जप किए जा रहे थे। फिर उस रात को एक अमीर व्यक्ति के स्वप्न में भगवान आए, उन्होंने कहा कि जाओ व्रजमंडल, वहाँ राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे हैं, ये धन जो तुम वहाँ देने वाले थे उनको जाके देना। तो अगले दिन वो पहुँच गए व्यापारी वहाँ पर, रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि ये धन है, मुझे आदेश मिला आपको देने के लिए। तो उनका मैं तो वैरागी हूँ, मैं क्या करूँगा इस धन से। लेकिन तब रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में विचार आया कि हाँ ये अभी शायद भगवान की इच्छा है कि यहाँ अच्छी तरह से घाट बने कुंड बने। तो भी जीव गोस्वामी पाद एक दूसरे गोस्वामी थे गोस्वामियों में से, वो भी वहां थे, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और रघुनाथ दास गोस्वामी के निर्देशन में जीव गोस्वामी पाद ने सारी व्यवस्था कर ली, निर्माण कार्य आदि का देखभाल किया और साथ साथ में जो कानूनी कार्य होते थे कागजात आदि के काम करने, उस समय में भी ऐसे होता था, तो वो सारे कार्य कर लिए और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के पहले महंत बने। तो खैर संक्षिप्त रूप में ये राधा कुंड का इतिहास है। तो वैष्णवों के लिए, विशेष करके उन वैष्णवों के लिए जो राधा कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये राधा कुंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये है सुंदर लीला राधा कुंड के संदर्भ में। तो अरिष्टासुर का वध करने के बाद श्री कृष्ण वृंदावन में लौट के आए और जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे, गोपी नाम नयनोत्सव, वो गोपियों के नेत्रों के लिए एक उत्सव थे, केवल गोपियों के लिए नहीं समस्त ब्रजवासियों के लिए, परंतु विशेष करके गोपियों के लिए। और उसके बाद में क्या हुआ आगे हम सुखदेव गोस्वामी जी का वर्णन सुनते हैं। तो आइए इस श्लोक का उच्चारण हम करेंगे, यहां ये श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 36वें अध्याय का 16वां श्लोक है। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शनः अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शनः बोलिएगा। अरिष्टे निहते दैत्ये कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शनः अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शनः। माताजी अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शनः अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसायाथाह भगवान् नारदो देवदर्शनः। अनुवाद। अद्भुत काम करने वाले श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद मुनि राजा कंस से बतलाने गए। इस दैवी दृष्टि वाले शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा, अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेन कृष्णेन अर्थात कृष्ण के द्वारा। अरिष्टे निहते दैत्य, वो दैत्य जिसका नाम था अरिष्ट, निहते जबकि उसकी हत्या हो गई, कृष्ण ने उसका वध कर दिया, तब क्या हुआ? उस समय कंस के पास नारद जी गए जो कि देव दिव्य दर्शी हैं, जिनकी दृष्टि दिव्य है, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। यहां श्री कृष्ण का संबोधन अद्भुत कर्मणा इन शब्दों से हुआ है। इसका अर्थ है कि कृष्ण वो व्यक्ति हैं जो अद्भुत कर्म करते हैं, इसलिए तो हम उन्हें भगवान कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं विविध योनियों में, ऐसे प्रतीत होता है कि वो उस योनि के ही कोई सदस्य हैं। जैसे जब वो मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट होते हैं तो जैसे मछली तैरती है जल में, तो भगवान मत्स्य अवतार के रूप में भी जल में तैरते हैं। जब वो नरसिंह देव के भगवान में प्रकट हुए, एक सिंह तो गरजता है, तो भगवान भी उस रूप में गरज रहे थे। तो ऐसे जिस योनि में, जिस समाज में भगवान प्रकट होते हैं, तो उस योनि के कार्यकलापों को अपनाते हैं, परंतु हर अवस्था में वो भगवान ही रहते हैं। तो जब मनुष्य समाज में आते हैं तो मनुष्य समाज की नकल करते हैं, जैसे मनुष्य कार्य करते हैं वैसे वो नकल करते हैं। वैसे बल्कि हमें कहना चाहिए कि जो भगवान कहते हैं उसकी नकल हम करते हैं। कई लोग हैं जिनकी धारणा ऐसी है कि वैसे भगवान का रूप है नहीं, मनुष्यों ने ऐसे ही बस आरोप किया है रूप का भगवान के ऊपर। जैसे मनुष्य का रूप है वैसे मनुष्यों ने अपना ही रूप भगवान के ऊपर आरोपित किया है। तो ऐसे लोग सोचते हैं कई कि वास्तव में भगवान निराकार हैं, उनका कोई मूल रूप नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसे कहावत है कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मतलब कि मनुष्य भगवान के रूप में बना हुआ है। ऐसा नहीं कि भगवान मनुष्य के रूप में बने हुए हैं। तो जो लोग भगवत तत्व नहीं जानते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि ये केवल एक आरोप है, काल्पनिक आरोप है जो मनुष्यों ने किया है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान का एक दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है और भगवान अपने धाम में सदैव विराजमान रहते हैं, और वही रूप भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट होता है जबकि भगवान यहां अवतीर्ण होते हैं। जब यहां वृंदावन में श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उसी रूप में प्रकट हुए जो कि गोलोक वृंदावन पर व्योम वृंदावन में रहता है भगवान का। तो जिस तरह से मूल रूप तो भगवान का है और मनुष्यों का रूप नकली रूप है, एक दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रतिबिंब है उनका, उनके रूप का, ठीक उसी प्रकार से ये संसार में जितने भी कार्य चलते हैं वो सब भगवत धाम के कार्यों के प्रतिबिंब मात्र हैं। इसलिए भगवान आके यह कार्य तो करते हैं और अज्ञानी लोगों को लगता है कि ये एक साधारण मनुष्य है, परंतु बीच बीच में भगवान ऐसे कुछ अद्भुत कार्य दिखा देते हैं कि जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक उदाहरण गोवर्धन लीला की दी जा सकती है। ऐसा कोई बच्चा है जो कि एक विशाल पर्वत को उठा सकता है। श्री कृष्ण तो उस समय केवल 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष के बच्चे की बात तो छोड़िए, आजकल ओलंपिक खेल चल रहे हैं तो लोग भारी भारी वजन भी उठा रहे हैं। किसी को स्वर्ण पदक मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, परंतु उनकी दशा देखिए, जब वो 100, 200, 300 किलो के वजन उठाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, मुख हसमुख नहीं रहता, बहुत सा विकार आ जाता है मुख के ऊपर, और वो भी दो क्षणों तक वो 200 किलो ऊपर रखते रखते जान बेचारों की छूट जाती है, बस रात देखते हैं कि कब इस वजन को नीचे फेंक दें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया तो हसमुख रहे, बड़े आराम से आसानी से खड़े रहे और मुख पे कोई विकार नहीं, उनका चेहरा बड़ा हसमुख था। तो ऐसे अद्भुत कार्य भगवान ने कर दिखाए। तो बीच बीच में भगवान ऐसे कार्य कर दिखाते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि देखो, मैं मनुष्यों की तरह कार्य तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक साधारण या असाधारण मनुष्य भी नहीं समझना, क्योंकि मैंने जो कार्य किया है वो असाधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता है। गोवर्धन उठाना या भगवान श्री रामचंद्र का सेतु बंधवाना समुद्र के ऊपर, ये भगवान के शक्तियों के सीमाओं का प्रदर्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो बहुत बड़ा काम किया, हमारे दृष्टि से तो बहुत बड़ा काम लगता है, परंतु भगवान के दृष्टि से एक पहाड़ उठाना कौन सी बड़ी बात है। अनंत शेष के बारे में बताया जाता है कि उनके फणों के ऊपर उन्होंने सारे ब्रह्मांड धारण किए हुए हैं, वो भी एक शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं, और भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की हुई है जिसका नाम है भू धारण शक्ति, समस्त ब्रह्मांडों को धारण करने की शक्ति। और शेष नाग को ये सारे ब्रह्मांड ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि वो तिल के बीज हों। तिल का बीज आपने हाथ में लिया होगा, भारी तो नहीं होता, बहुत हल्का हल्का होता है। तो ये ब्रह्मांड जो हैं, जो भी शेष नाग के फणों पे हैं, वो ऐसे इतने ही हल्के महसूस होते हैं शेष नाग को। तो जब अनंत कोटि ब्रह्मांड इतने आसानी से वो धारण कर सकते हैं, तो एक पहाड़ को धारण करना क्या कोई मुश्किल है भगवान के लिए। फिर भी क्योंकि भगवान नरलीला कर रहे हैं, और नरलीला करते समय जब वो ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तब ये बहुत अद्भुत कार्य माना जाता है। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान माखन चोरी करने के लिए केवल इसलिए नहीं करते हैं कि वो माखन चोरी करते हैं, माखन चोरी तो अनेक लोग करते होंगे लेकिन उनका गुणगान तो हम नहीं करते हैं, तो कृष्ण का ही क्यों करते हैं। क्योंकि भगवान होने के बाद भी वो ऐसे एक सुंदर बच्चे की तरह, साधारण बच्चे की तरह सुंदर लीला करते हैं, इसलिए हम गुणगान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं तो हम गुणगान करते हैं। भगवान जो भी कुछ करते हैं वो हमारे लिए प्रशंसनीय है, श्रवणीय है, स्मरणीय है, क्योंकि ये सब भगवान से संबंधित हैं। तो भगवान का प्रत्येक कार्य जो है अद्भुत है। तो जो भी भगवान करते हैं वो चमत्कार ही है, और सच्चे भक्त सदैव भगवान के ऐसे कार्यों के बारे में श्रवण करते रहना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम अद्भुत कर्मणा है, जिनके कर्म वास्तव में अद्भुत होते हैं। तो ये विषय बड़ा सुंदर है। यदि आप और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि आगे चल के नारद मुनि ने कंस को क्या कहा, तो फिर आपको कल शाम को यहाँ आना होगा। तो अब एक दो मिनट बचे हैं, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रश्न ये है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत में राधा कुंड और श्याम कुंड के प्राकट्य की ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसका वर्णन क्यों नहीं किया। वैसे राधा कुंड की बात तो दूर है, सुखदेव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से राधा रानी का नाम भी नहीं लिया, एक बार भी नहीं लिया। केवल एक श्लोक है जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राधा रानी का नाम लिया। कौन सा शब्द का प्रयोग किया? अनयाराधिता नूनम, आराधिता, आराधिता, इसमें राधा शब्द आता है। तात्पर्य कारण इसके पीछे ये है कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के बहुत शुद्ध भक्त हैं और राधा रानी का नाम लेने से ही वो भाव विभोर होकर वो बेहोश होकर गिर पड़ते। तो उन्होंने सोचा कि मैं अभी राधा रानी का नाम लूंगा और मैं भाव विभोर होकर गिर पड़ूंगा तो यहाँ बेचारे परीक्षित महाराज का क्या होगा। 7 दिन में तो सारा श्रीमद् भागवत उनको सुनाना है, तो इसलिए फिर डर के मारे सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया, इसलिए स्पष्ट रूप से राधा कुंड के आविर्भाव या प्राकट्य की लीला का वर्णन भी सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया।
हरे कृष्ण।
हाँ
हरे कृष्ण महाराज, जैसे अरिष्टासुर का वध होने के बाद राधा कुंड की लीला हो गई, वत्थासुर भी एक बचड़ा ही था, उसके बाद कुछ लीला हुई।
वत्सासुर भी एक असुर था जिसने एक वत्स का रूप धारण किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध तो आसानी से कर दिया, परंतु उसके बाद हाँ थोड़ा कुछ हुआ, लेकिन ऐसे कोई कुंड के प्राकट्य की लीला नहीं हुई। ये अरिष्टासुर के लिए रखा गया है। अच्छा, अभी समय हो गया तो ये प्रश्न कल, इनका उत्तर कल देंगे। तो अब आरती, अब भगवान के दर्शन होंगे और थोड़े समय के लिए कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण।